आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आर्थिक सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान, कल आएगा नई सरकार का पहला बजट। जबलपुर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 22,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। सरकार ने आज दोहराया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। और सावन के पहले सोमवार में मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, उज्जैन और ओंकारेश्वर में निकली सवारी। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल वे नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद, व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। इससे ग्रामीण मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। जबलपुर में 20 जुलाई को संपन्न रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वृहद इकाइयों के साथ ही एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों ने लगभग 22,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। प्रदेश में वृहद इकाइयों की स्थापना के लिए 17,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमएसएमई इकाइयों की ओर से प्राप्त 5,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जबलपुर आरईसी में सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव रक्षा उपकरण निर्माण से संबंधित 600 करोड़ रुपए का है। इसके अंतर्गत अशोक लेलैंड और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच करारनामा भी हो गया है। यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत डिस्कॉम बिजली वितरण कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। सौर क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिवारों को अपनी बिजली बनाने के उद्देश्य से इस योजना को इस वर्ष फरवरी में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 94 सीएम राइस स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक और शारीरिक विकास सहित खेल और अन्य विधाओं की शिक्षा भी दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले 94 सीएम राइस स्कूल्स में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 सीएम राइस स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा कर इनमें जल्द से जल्द पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइस स्कूलों के निर्माण के लिए सरकार ने जारी वर्ष के सालाना बजट में 667 करोड़ रुपए आरक्षित कर दिए हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरकार ने आज दोहराया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 2 ज्ञापन प्राप्त हुए थे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एक अन्य सवाल के उत्तर में श्री चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की प्रथम सवारी निकली। इस सवारी के दर्शन के लिए देश विदेश से अनेक स्थानों से लोग उज्जैन आते हैं। प्रशासन द्वारा सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। आज पूजन के पश्चात बाबा महाकाल का मुखारविंद पालकी में विराजित किया गया और पालकी मुख्य द्वार पर लाई गई। यहां परम्परानुसार सशस्त्र पुलिस बल ने बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यहां से पुलिस बैंड की सुमधुर धुन पर बाबा नगर भ्रमण पर निकले। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग श्रावण मास में भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारी भी निकाली जा रही है। श्रावण माह में यह सवारी ओंकारेश्वर मंदिर से होकर कोटी तीर्थ घाट पहुंची, जहां भगवान ओंकारेश्वर की रजत प्रतिमा का दुग्ध और पंचामृत से अभिषेक किया गया। नगर भ्रमण के बाद पुनः रात्रि को ओंकारेश्वर मंदिर में सवारी का समापन होगा। अग्नि दुर्घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी नियंत्रण के लिए इंदौर शहर में अग्निशमन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके तहत शहर में 7 नई जगह नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। शहर में अग्निशमन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए वाहन भी खरीदे जाएंगे। शहर में शिप्रा और कान नदी के शुद्धिकरण हेतु 7 एसटीपी प्लांट बनाए जाएंगे। यह जानकारी कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में आज दी गई। उन्होंने बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने भिक्षावृत्ति के विरुद्ध चल रहे अभियान को भी गति देने के निर्देश दिए। सीहोर जिले के शाहगंज के नजदीक स्थित अमरगढ़ वाटरफॉल में कल शाम 5 लोगों के बाढ़ में फंसने की घटना के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर ने निर्देश जारी कर जल भराव वाले क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने और स्थानीय लोगों से संपर्क में रहने के लिए कहा है। रविवार शाम को वर्षा के कारण थाना शाहगंज अंतर्गत चांदनी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से जंगल में फंसे 5 लोगों को पुलिस, वन अमले और एसडीआरएफ की संयुक्त कार्रवाई से सकुशल रेस्क्यू किया गया था। बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में मॉनसून की गतिविधियां जारी हैं। बारिश के स्ट्रांग सिस्टम ने पूरे प्रदेश को तरबतर कर दिया है। भोपाल में सुबह से कभी धीमी तो कभी तेज बारिश हो रही है। इससे पहले बैतूल में सतपुड़ा बांध के 14 में से 11 गेट खुल गए, जबकि श्योपुर का आवदा डैम भी ओवरफ्लो हो गया। नर्मदा 3 फीट ऊपर बह रही है, इससे इंदिरा सागर डैम में भी पानी बढ़ा है। अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन समेत 36 जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। अब बात खेल की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए 8,50,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय दल में से 117 खिलाड़ी, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल हैं। 140 सहयोगी सदस्य भी इस दल का हिस्सा हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक इस महीने की 26 से शुरू होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने आज गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। बैतूल में वन विद्यालय में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों के विषय में जानकारी दी गई। रायसेन के सागर मार्ग पर स्थित आईटीआई भवन में राजस्व महाअभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व महाअभियान को लेकर अधिकारियों और पटवारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। गुना जिले में 4 परीक्षा केंद्रों पर डीएलएड द्वितीय वर्ष में 1020 दर्ज परीक्षार्थियों में से 1011 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। राजगढ़ में भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली व राजगढ़ जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग से जिले के शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 24 से 31 जुलाई तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। और नीमच जिले में कलेक्टर ने बारिश में जलभराव की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने और जल की निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान। कल आएगा नई सरकार का पहला बजट। जबलपुर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 22,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। सरकार ने आज दोहराया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है और सावन के पहले सोमवार में मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, उज्जैन और ओंकारेश्वर में निकली सवारी। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार।